नमस्कार भारत, तारीख 8 मार्च, दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। तेलुगु देशम पार्टी के मंत्री आज देंगे केंद्र सरकार से इस्तीफा। कल रात चंद्रबाबू नायडू ने किया सरकार से अलग होने का ऐलान। खास रिपोर्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हरियाणा के भिवानी जिले के अलकपुरा गांव को कर दिया है मशहूर।
हर घर की लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल खेलती है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरी भी लड़की फुटबॉल खेले और टीम में आए।
और दुनिया जहान में पड़ताल, बार बार राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में क्यों अटक जाता है इटली।
कुछ लोग तो कहते हैं कि मौसम की तरह सरकार भी बदलती है इटली। कुछ लोग ये कहते हैं उनकी डाइवर्सिटी का ये नमूना है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल रात केंद्र की एनडीए सरकार से अलग होने का ऐलान किया। टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट में टीडीपी के दो मंत्री आज इस्तीफा देंगे। नागालैंड में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है और नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा।
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के नेता नेफ्यू बीजेपी के साथ मिलकर आज नागालैंड में नई सरकार का गठन कर रहे हैं। राजधानी कोहिमा के लोकल ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जहां 11:30 बजे एनडीपीपी के नेता नेफ्यू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लोगों की शिकायत है कि रियो पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार बीजेपी के साथ मिलकर जो सरकार बना रहे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी दावा करती रही है कि वो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विकास का काम उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इस बार शायद कोई बदलाव आए।
ये थे दिलीप कुमार शर्मा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तीन दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। लंदन में उनकी मुलाकात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से हुई, जहां टेरेसा मे ने मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री और मोहम्मद बिन सलमान यमन में राजनीतिक हल और सहायता पहुंचाने के लिए राजी हो गए हैं, जहां सऊदी अरब की सेना युद्ध में शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया दोनों देशों के बीच $90 बिलियन का व्यापार और निवेश समझौता भी होने जा रहा है। दरअसल इस दौरे पर विवाद का साया भी मंडरा रहा था, क्योंकि यमन में युद्ध और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सऊदी की भागीदारी पर ब्रिटेन में नाराजगी थी और विरोध प्रदर्शनों की आशंका भी। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सऊदी अरब के साथ संबंधों का यह कहकर बचाव किया था कि आपसी सुरक्षा सहयोग ने ब्रिटेन में काफी जिंदगियों को बचाया है। अमेरिका के एल्यूमिनियम और स्टील आयात पर टैरिफ लगाने को लेकर यूरोपीय संघ ने अमेरिका की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ये कदम अमेरिका की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन इस तर्क से यूरोपीय संघ की ट्रेड कमिश्नर सिसिलिया मेलमस्ट्रॉम सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि यूरोपीय संघ, जो कि नाटो में अमेरिका का सहयोगी है, दोस्त है, वो कैसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। अमेरिका का ये सोचना गलत है। हमें तो समझ आता है कि ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया गया कदम है, लेकिन बहाना राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसका मतलब है कि हम अमेरिका के साथ WTO के तहत हुए समझौते का सहारा ले सकते हैं, ताकि इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर सकें। ट्रेड कमिश्नर सिसिलिया मेलमस्ट्रॉम के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। श्रीलंका में आपातकाल लगा है और बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहला लोगों और मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति है। सिंहली बौद्धों ने श्रीलंका के कैंडी शहर में मुसलमानों की घरों व दुकानों पर हमले किए और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। सिंहली बौद्धों ने एक युवक की मौत के बाद कर्फ्यू में भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। श्रीलंका की आबादी 2,10,00,000 के करीब है और इसमें 70% बौद्ध हैं और 9% मुसलमान। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने सोशल मीडिया के जरिए श्रीलंका के लोगों से हिंसा रोकने की भावुक अपील भी की। फ्रांस की सरकार अपने श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है, जिसमें महिलाओं की तनख्वाह एक अहम मुद्दा है। फ्रांस में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तनख्वाह 9% ज्यादा है, जबकि 45 साल पहले ही समान वेतन का कानून बन चुका है। सरकार का कहना है कि कंपनियों को 3 साल का वक्त दिया जाएगा, ताकि वो महिलाओं और पुरुषों के वेतन में असमानता को खत्म कर सकें। अगर कंपनियां ऐसा करने में नाकाम रहीं, तो उनके श्रम बजट का 1% जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बदल रहा है, राजनीति के समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं। कल रात तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायडू ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार से अलग हो रही है। केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी के दो मंत्री आज इस्तीफा देंगे। टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है। हालांकि नायडू ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अलग होने का ऐलान नहीं किया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए इमरान कुरैशी से।
पिछले कुछ दिनों से संसद के सामने टीडीपी के प्रदर्शन में बहुत सारे दूसरे दलों के सदस्य भी भाग लेते आ रहे हैं और कल सुबह से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार संसद सदस्यों और विधानसभा में केंद्र पर वार करते आ रहे हैं। उन्होंने संसद सदस्यों से कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का लगातार अपमान करती आ रही है। केंद्र सरकार ने जो वायदा किया था कि आंध्र प्रदेश को राज्य के बंटवारे के बाद एक खास दर्जा दिया जाएगा और उसके तहत मौद्रिक पैकेज भी मिलेगा, वो उसने नहीं निभाया। नायडू ने फिर राज्य की विधानसभा में कहा कि वो दिल्ली 29 बार गए थे ताकि वो मौद्रिक पैकेज ला सके, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का हक मांग रहे थे। फिर शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में कहा कि वो खास दर्जा नहीं दे पाएंगे लेकिन उसके लायक का मौद्रिक पैकेज देंगे, लेकिन नायडू को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, जब राज्य का बंटवारा हुआ था तब लोग बंटवारे से बहुत खुश नहीं थे और कांग्रेस को जाना पड़ा था। मैंने आज लोगों की भावनाओं को विधानसभा में समझाया लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों की इन भावनाओं को नहीं समझा, इसलिए हमने अपने दो मंत्री वापस लेने का फैसला लिया है। इस बारे में मैंने मंत्रियों से भी चर्चा की है और ये फैसला लिया है। ये थे चंद्रबाबू नायडू के शब्द। इस बयान के बावजूद नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं निकले हैं, तो इसके कई कारण हैं। उसमें से एक कारण केंद्र की दृष्टिकोण तो है ही, उसके अलावा आंध्र प्रदेश की अंदरूनी राजनीतिक परिस्थिति भी है। उसको वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और TV5 चैनल के ग्रुप संपादक दिनेश अकुला कहते हैं,
देखिए नायडू जो है बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, वो जो भी करते हैं बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। यहाँ पर उनके पास दो इश्यूज है, एक तो सेंटर में एक इश्यू है और एक स्टेट में है। स्टेट में इश्यू है ये है कि उनका जो राइवल है, मेन राइवल YSRCP के जगनमोहन रेड्डी, वो स्पेशल स्टेटस को लेकर बहुत जोरदार हंगामा कर रहे हैं। चुनाव एक साल के बाद है और दूसरे एक राइवल जो है जो उभर रहे हैं बहुत जोर से, वो है टॉलीवुड के एक्टर जो जनसेना के मुखिया भी है पवन कल्याण, वो भी आ रहे हैं, वो भी स्पेशल स्टेटस आंध्रा को लेकर
नायडू की नाराजगी से एनडीए सरकार के लिए कुछ मायने रखती है। दो महीने पहले शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया कि वो अगले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मतलब ये इन दोनों वाक्यों से ये बात उभर कर दिखने को मिल रही है कि बीजेपी के नेतृत्व की एनडीए सरकार में रिश्तों को संभालना मुश्किल का काम है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
4 साल का साथ और फिर अलगाव, राजनीति का ये अजब रंग है। और सबसे अहम यह है कि टीडीपी ने बीजेपी और एनडीए से पूरी तरह संबंध खत्म नहीं किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर बीबीसी संवाददाता दीप्ति बत्तनी नजर बनाए हुए हैं और अभी फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीडीपी का ये जो फैसला है इसमें आंध्र के हित का कितना ध्यान रखा गया है और 2019 के चुनाव पर कितनी नजर है?
जी बिल्कुल, ये 2019 के चुनाव जो है अभी एक और साल बचा है। अभी अभी फिलहाल जो सेशन चल रहा है, अभी असेंबली सेशन, बजट सेशन चल रहा है, ये आखिरी बजट सेशन होगा इस गवर्नमेंट का। तो इस तरह जब देखा जा रहा है आंध्र प्रदेश के हित के लिए, जो भी चंद्रबाबू नायडू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कल असेंबली में भी जो बातें रखी थी आगे, ये आंध्र प्रदेश के हित में ही है ये फैसला करके उन्होंने बताया था, एक सवाल एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। अभी देखना ये होगा कि लाइक अभी आंध्र प्रदेश के लोग किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे, पर अभी फिलहाल जो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, बाकी ओपोजिशन पार्टीज भी इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कल जब चंद्रबाबू नायडू ने ये फैसला ऐलान किया था कि दो मंत्रियों को वो एनडीए सरकार से वापस ले रहे हैं
जी,
उसी तरह उसी प्रकार यहाँ पे राष्ट्र में भी जो कैबिनेट में दो मंत्री हैं उन बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी रेजिग्नेशन देने का फैसला लिया है। तो अभी अपोजिशन पार्टीज भी काफी नजर बना के रखी
हुई है। इस्तीफे की राजनीति दीप्ति शुरू हो गई है, लेकिन अभी एनडीए का हिस्सा है टीडीपी, आगे आप क्या संभावना देख रही हैं? क्योंकि नायडू ने कहा ये उनका पहला कदम है, कुछ और कदम उठा सकते हैं वो?
देखिए अभी जो भी होगा अभी स्पेकुलेशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, वो जब सवाल उठाया गया था कि एनडीए से वो सपोर्ट विदड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पे उन्होंने बताया था कि लाइक अभी तो फिलहाल हम नहीं विदड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, बट ये फिलहाल सिर्फ सरकार से जो जो दो मंत्री हैं उसी का सपोर्ट विदड्रॉ कर रहे हैं। तो आगे शायद यही होगा इनका स्ट्रेटेजी कि वहां से एनडीए से भी अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर ले।
जी बहुत शुक्रिया दीप्ति। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक पारा उत्तर प्रदेश में भी चढ़ा हुआ है। यूपी में लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से एक सीट है फूलपुर जो उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी के लिए इस सीट का मुकाबला प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और निर्दलीय उम्मीदवार अतीक अहमद को बीजेपी के संकट मोचक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, बता रहे समीर आत्मज मिश्र अपनी इस रिपोर्ट में।
शाम के करीब 7:30 बजे हैं, इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक बड़े से घर के बाहर लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ 19-20 साल का एक नौजवान एक गाड़ी से उतरता है और फिर तमाम लोग उसे घेर लेते हैं। इस युवक का नाम उमर अहमद है और ये दिल्ली में अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेकर जेल में बंद पिता के चुनाव प्रचार का काम देख रहे हैं। अतीक अहमद ने जब यहाँ से नामांकन किया तो सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि इस बात की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। ऐसी अफवाहें हवा में तैरने लगीं कि अतीक अहमद भाजपा के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के मकसद से आए हैं, लेकिन उमर अहमद इसका मकसद ये बताते हैं।
हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र से जहां से पंडित नेहरू सांसद हुआ करते थे और इतनी अहम लोकसभा सीट है ये, वहां पे भाजपा जो है आराम से निकल जाए। हमारे पास ये खबर ज़रूर आई, लेकिन ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का सबब है जो ये अफवाह वो लोग फैला रहे हैं। बाकी ये शहर इस बात का गवाह रहा है कि अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे अब्बा ने हमेशा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने का और उनको लगातार कमज़ोर करने का काम किया है।
अतीक अहमद पहले समाजवादी पार्टी में थे, अपना दल में रहे और अब एक बार फिर निर्दलीय हैं। इलाहाबाद की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर वो लगातार कई बार चुनाव जीत चुके हैं। इस दौरान केशव मौर्य भी कई बार उनके प्रतिद्वंद्वी थे। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश मिश्र कहते हैं,
जिस तरीके से अतीक अहमद का नामांकन हुआ अंतिम दौर में अंतिम दिन में, उससे यही स्पष्ट होता है और क्षेत्र में एक बड़ी आम चर्चा है कि केशव मौर्य जब चुनाव होता था अतीक अहमद लड़ते थे पश्चिमी से, केशव मौर्य ने भाजपा के कैंडिडेट के होते हुए भी अतीक का सपोर्ट किया।
अखिलेश मिश्र की बात की पुष्टि इलाहाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विभाकर शास्त्री भी करते हैं।
कांग्रेस को कोई उससे नुकसान नहीं है और जिस उद्देश्य से, मेरा भी ये मानना है कि भाजपा ने ही उनको खड़ा किया है। और जब अगर आप पिछले 3-4 दिनों का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें भाजपा के जितने मंत्री हैं सबने यहाँ पे अपने भाषणों में ये कहा है कि हमारी लड़ाई सीधे के सीधे अतीक से है, ना सपा लड़ाई में ना कांग्रेस लड़ाई में। तो ये तो स्पष्ट है कि उसको राजनीतिक गेन के लिए भाजपा ने खड़ा किया ताकि वोट बटे, उस एक समाज का वोट बट जाए और भाजपा को फायदा हो जाए।
लेकिन केशव मौर्य इस बात को सिरे से खारिज करते हैं।
मेरे कारण से अतीक अहमद जैसे बाहुबली और आपराधिक किस्म के व्यक्ति की राजनीति की के अंदर से बनवास शुरू हो गया है। 2004 में मैं बाई इलेक्शन लड़ा था, हारा था। 2007 में यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा था, हारा था। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा उस समय अतीक अहमद को सफलता नहीं मिली, मैं जरूर सफल नहीं हो पाया। उस समय बीएसपी कैंडिडेट के रूप में हिंदुत्व की लड़ाई का स्वरूप बन गया था जिसमें राजू पाल जीते, फिर उनकी पत्नी पूजा पाल जीती।
केशव मौर्य अतीक अहमद के आने से भाजपा के फायदे या नुकसान की बात को तो खारिज करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला अतीक अहमद से ही है। लेकिन आम लोगों की राय इससे कुछ अलग है।
नहीं, कोई नहीं भरवाया, वो केवल सपा खुन्नस में कूद गए, बस सपा हार जाओ जीत गए।
लेकिन इससे तो भाजपा को लोग कह रहे हैं फायदा पहुंचा दे रहे हैं।
अब सीधा फायदा दिख रहा है
कि सब आदमी होशियार हो चुके हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, जिसकी जहाँ मर्जी होगी वहीं उड़ देगा अपना। इसलिए कोई किसी को कहता नहीं है, दुश्मनी नहीं मिलेगी, अगर कहेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी। जो है चार जगह पहले जो है जातिवाद पर चलता था, अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे।
बहरहाल उपचुनाव होने में अब महज 3 दिन ही बचे हैं।
जानकारों का कहना है कि चुनावी शोर भले ही धीमा सुनाई पड़ रहा है, लेकिन चुनावी गणित यहाँ काफी उलझी हुई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC इलाहाबाद।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले के अलकपुरा गांव की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से। इस गांव की कई लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। इनकी कामयाबी ने इस गांव की तस्वीर ही बदल के रख दी है। सुनिए BBC संवाददाता गुरप्रीत कौर की खास रिपोर्ट।
सुबह के 6 बज रहे हैं और हम हरियाणा के एक छोटे से गांव अलकपुरा में हैं। एक एक करके सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे हैं और स्पोर्ट्स ड्रेस पहने लड़कियां फुटबॉल लेकर घरों से निकल रही हैं। पहली नज़र में ये लड़कियां नहीं लड़के लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर का हेयर कट और चाल ढाल लड़कों जैसा है। लड़कियों का ये समूह गांव के खेल मैदान की तरफ बढ़ रहा है। 17 साल की तनुजा अपनी 3 छोटी बहनों के साथ खिलखिलाते हुए मैदान में प्रैक्टिस के लिए जा रही है। वो बताती हैं,
मैंने अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 18 में नेशनल्स खेले हैं। अंडर 19 में फर्स्ट प्लेस है। हम 6 बहन भाई हैं, बड़ी दीदी की शादी हो गई है और 4 बहनें और 1 भाई खेल रहे हैं अभी फुटबॉल में।
तनुजा जैसी 200 लड़कियां मैदान में इकट्ठा हो चुकी हैं और शुरू हो गया है दनादन गोल करने का सिलसिला। अलग अलग उम्र की लड़कियां अलग अलग ग्रुप में प्रैक्टिस कर रही हैं। छोटी लड़कियां फुटबॉल खेलना सीख रही हैं तो बड़ी लड़कियां आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी कर रही हैं। कोच सोनिका बिजानिया सबकी प्रैक्टिस पर बराबर नजर रख रही है। इन लड़कियों के पास महंगे जूते और किट भले ही ना हो, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। अलकपुरा गांव की 50 से ज्यादा लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 लड़कियां भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। उपलब्धियों की बात करें तो गांव की टीम 2 बार सुब्रतो कप जीत चुकी है। इसके अलावा अंडर 14, 17 और अंडर 19 नेशनल्स में हर साल गाँव की लड़कियाँ मेडल लेकर आती हैं। अंडर 19 स्कूल नेशनल में लगातार 5 बार गोल्ड गाँव की इन छोरियों ने अपने नाम किया है। ये तो महज वानगी भर है। कोच सोनिका बिजानिया बताती हैं,
हर घर की लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल खेलती है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरी भी लड़की ग्राउंड में जाए और फुटबॉल खेले और टीम में आए। किसी गांव में भी आप किसी से पूछोगे ना, बेटी एक कोई बात को नहीं, और छोरी लाग गई या भी लाग जाएगी। मतलब अब गांव की ये सोच है कि इसको ग्राउंड पे भेज देंगे।
सुबह के 8:30 बज गए हैं और लड़कियां ग्राउंड से लौटने लगी हैं। खेल तो खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां घर में अभी इंतजार कर रही हैं। अभ्यास के बाद घर और खेत का काम है और पढ़ाई भी करनी है। इसके बाद 2:30 बजे एक बार फिर मैदान की ओर निकलना है। गांव की लड़कियों में खेल की अलख 2006 में जगी थी, जब यहां के सरकारी स्कूल में फिजिकल ट्रेनर गोवर्धन दास आए। उन्होंने लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 10-12 लड़कियां ही खेलती थीं, लेकिन आज पूरा गांव फुटबॉल के साथ दौड़ता है। अलकपुरा फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट सुरेश कुमार बताते हैं,
गाँव के लोग सबसे पहले तो ग्राउंड पे लड़कियों को भेजते ही नहीं थे जी। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बच्चे खेलने के लिए गए, तो गाँव के कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया।
लड़कियों के जज्बे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सोनिका बिजानिया को स्कूल का खेल कोच नियुक्त कर दिया। अब सरकार ने गांव में एस्ट्रोटर्फ बनाने की मंजूरी दी है। ये फुटबॉल के लिए खास तरह की घास वाला मैदान होता है। इसे बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। इस तरह के मैदान पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं। फुटबॉलर तनुजा जाखड़ इस पर खुशी जताते हुए कहती हैं,
पहले हम स्टार्टिंग में गए थे बाहर खेलने, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मिला, उसमें हार्ड होता खेलना, थोड़ा डिफिकल्ट बहुत होता है, क्योंकि उसमें उससे मसल्स फुल हो जाते हैं हमारी, क्योंकि हम मिट्टी में खेलते हैं ना, और वो एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए ये हो जाएगा।
कोच सोनिका कहती हैं कि पूरे गांव का सपना है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम में एक दिन सभी लड़कियां अलकपुर से हों और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएं। अलकपुरा ने खेल के नक्शे पर एक अलग पहचान बनाई है। उम्मीद है कि सरकार की ओर से जिस समर्थन का वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। गुरप्रीत कौर, अलकपुरा गांव, जिला भिवानी, हरियाणा।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर। और अब वक्त है दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालने का। सर्वप्रिया मौजूद हैं अखबारों के साथ।
सबसे पहले तो हमारी महिला श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। और दैनिक भास्कर ने आज अपने अखबार को वुमेन भास्कर का नाम दिया है और पहला पन्ना महिलाओं की प्रेरक खबरों से भरा है और साथ ही गुलाब की खुशबू भी है।
जी बधाई आपको भी सर प्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया। और अमर उजाला ने भी ऐसा ही पहला पन्ना छापा है। और वात्सल्य, देखिए अमीर लोगों की संख्या और उनकी अमीरी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक भारत में अरबपति लोगों की संख्या 119 हो गई है। पिछले साल 101 लोग अरबपतियों की फेहरिस्त में थे। सभी अरबपतियों की संपत्ति मिलाकर 440 अरब डॉलर है, जो पिछले साल 325 अरब डॉलर थी। ये लिस्ट फोर्ब्स ने निकाली है। दूसरी जो खबर है वो आधार को लेकर है कि देश में होने वाली किसी केंद्रीय परीक्षा के लिए इस साल आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। और एक और खबर जो बड़ी ही दिलचस्प है कि हिंदुस्तान अखबार ने छापी है और उन्होंने लिखा है कि सेना के अफसरों और जवानों की भर्तियां घट रही हैं। पिछले 3 साल के आंकड़े यही बताते हैं कि, और रक्षा मंत्रालय ने संसद में ये जानकारी दी है कि 2014-15 में कभी 66,000 के करीब भर्तियां हुई थी, जो अभी 2017-18 में 17,257 ही रह गई हैं।
यानी लगातार कमी इसमें आ रही है।
जी,
बहुत शुक्रिया सरप्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजनीति में इटली का जिक्र कई बार आता है, लेकिन आज दुनिया जहान में हम कर रहे हैं इटली की राजनीति की बात। इटली में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में सरकार गठन की सूरत साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जबकि इटली में ऐसे हालात बने हों, लेकिन ऐसा क्यों है? बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहां, भूमध्य सागर के बीचों बीच बसा खूबसूरत देश इटली इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, मगर नतीजे ऐसे रहे कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक इटली में 60 से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं। आखिर इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या है? इटली में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा बताते हैं।
कई इसके डायग्नोसिस हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मौसम की तरह सरकार भी बदलती है इटली में। कुछ लोग ये कहते हैं उनकी डाइवर्सिटी का ये नमूना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इटली, जैसे हम आज समझते हैं कि एक यूनिफाइड कंट्री है, 1860 तक यूनिफाइड कंट्री नहीं था, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये उभर के आते हैं इलेक्शन टाइम पे।
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की जड़ें पहले विश्व युद्ध तक जाती हैं। इटली को पहले विश्व युद्ध में जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद वहां आर्थिक और सामाजिक बिखराव आ गया। 1922 तक भयंकर राजनीतिक अस्थिरता आने के बाद इटली के राजा विक्टर इमैनुएल ने हालात संभालने के लिए फासिस्ट पार्टी के संस्थापक बेनितो मुसोलिनी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन 1925 तक मुसोलिनी इटली के तानाशाह बन गए। फिर शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें मुसोलिनी ने हिटलर के साथ आते हुए फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस विश्व युद्ध में इटली की हार हुई और 1943 में मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया। 1946 में जनमत संग्रह के बाद इटली को गणतंत्र घोषित किया गया। 1948 में नया संविधान बना, लेकिन तब से लेकर अब तक सरकारों के बनने गिरने और गठबंधनों का दौर जारी है। इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। चुनाव से पहले देश के दक्षिणी हिस्से की गरीबी और देश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाने और प्रवासियों का विरोध करने वाली जनवादी पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन क्यों? राजीव डोगरा बताते हैं।
जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है तो ये छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो दब जाते हैं, और अगर सरकार बदल भी रही हो तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अपनी रफ्तार पे चलती रहती है। और इटालियंस हमेशा माने जाते रहे हैं उनकी इमेजिनेशन पे, उनकी डिजाइन प्रोफिशिएंसी पे, तो अभी तक तो उससे गाड़ी चलती रही। पर अब हाल में आके, क्योंकि उनका एज प्रोफाइल चेंज हो रहा है, इटली एजिंग पॉपुलेशन है, उन्होंने एक तो इमिग्रेशन अपनी तरफ से खुली छोड़ दी कुछ देर के लिए, उसके बाद फोर्स्ड इमिग्रेशन शुरू हो गई, जैसे सीरिया में जो हाल हुआ या उधर लीबिया वगैरह में जो हाल हुआ, तो इटली एक पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था यूरोप में इमिग्रेंट्स के लिए। तो हाल ऐसा हो गया कि इमिग्रेंट्स ज्यादा हो गए जॉब मार्केट में, और इटालियंस जो जॉब मार्केट में आना चाहते थे उनकी अपॉर्चुनिटीज जो है कम होती गई।
प्रवासियों और बेरोजगारी के मुद्दे पर फाइव स्टार मूवमेंट को वोट तो मिले लेकिन इतने नहीं कि सरकार बना सके। दक्षिण पंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसका नेतृत्व इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी कर रही थी। बर्लुस्कोनी कई विवादों में रहे हैं और टैक्स फ्रॉड के लिए उन्हें दोषी भी करार दिया गया है। अभी एक साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी है, लेकिन उनका गठबंधन एक बार फिर सबसे ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो गया। राजीव डोगरा।
बर्लुस्कोनी के एग्जाम्पल ये भी मिसाल है कि नेवर से डाई इन पॉलिटिक्स, कभी ये ना कहिए कि पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिशियन जो है उसकी इनिंग्स खत्म हो गई हैं। पर मोर सीरियसली ये जो राइट विंग की तरफ रुझान जा रहा है इटली का, वो एक ट्रेंड सा है वेस्ट में। अगर देखा जाए ऑस्ट्रिया में राइटिस्ट पार्टीज सरकार में है, जर्मनी में राइटिस्ट पार्टीज को काफी बढ़त मिली है, अमेरिका में भी देखा जाए इन वे तो राइटिस्ट पार्टीज आई हैं। तो इटली में जो राइटिस्ट पार्टीज का आना है, एक तो ये रिएक्शन है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट।
फैशन और डिजाइन इंडस्ट्री से लेकर कई बातों के लिए ग्लोबल लीडर है इटली। इटली ने कई महान विद्वान, कलाकार और खोजकर्ता दिए हैं, जिनमें लियोनार्डो दा विंची, रफाइल, गैलीलियो, मार्को पोलो और क्रिस्टोफर कोलंबस शामिल हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम के कई स्मारक और वेनिस जैसी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी दी हैं इटली ने। पिज्जा जैसी डिश से लेकर ओपेरा जैसी कला भी इटली से ही पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जानकार कहते हैं कि जब तक लोगों में असंतोष रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रहेगी।
तो मेरे को ये लगता है ये अब जो है लॉन्ग टर्म इश्यूज सब बन जाएगा। चाहे आप देखें 10 साल पहले बर्लुस्कोनी, फिर फ्रोदी, उनकी सरकारें काफी स्थिर रही थी क्योंकि इटली की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में स्टेबल थी उस टाइम और राइजिंग ग्राफ पे थी। एक तो वो, और दूसरा जब तक ये इमिग्रेशन का इश्यू सॉल्व नहीं होगा और जो अभी भी इमिग्रेंट्स इटली में प्रेजेंट हैं उनके बारे में कोई हल नहीं ढूंढा जाएगा, ये डिससैटिस्फैक्शन पब्लिक की पॉलिटिकल इश्यूज में रिफ्लेक्ट हो।
जानकार कहते हैं कि मुद्दा इतना सरल नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का रास्ता ये है कि इटली की अर्थव्यवस्था उसी दौर में आ जाए जैसी 70 के दशक में थी। सबसे जरूरी बात, लोगों को संतुष्ट करना होगा और जब तक लोगों में असंतोष रहेगा, राजनीतिक स्थिरता आना मुश्किल है।
आदर्श राठौर की प्रस्तुति पर अपनी राय जरूर साझा करें। बात पाकिस्तान की राजनीति की करें तो वहां संसद के ऊपरी सदन के लिए एक हिंदू दलित महिला चुनी गई है। नाम है कृष्णा कोहली। क्या है उनकी कहानी, खुद उनसे ही सुनिए।
मेरा गांव धना गांव है, तालका नगर पार्कर, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का। वो गांव नगर पार्कर जो तहसील जो टाउन है वहां से आधा पौना घंटा का फासला है वहां से, और वहां रोड बिल्कुल कच्चा रोड है, रेती वाला वो है, और कोई वहां कोई लाइट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं करता, और पानी के भी बड़ा मसाइल, वहां के जो कमे है उनपे पानी खा रहा है, मीठा पानी नहीं है, तो मीठे पानी के लिए काफी दूर तक हमें जाना पड़ता है उनको, हमारे जो खवातीन है उनको। मैंने 8वीं तक मैंने 10 स्कूल तब्दील किए हैं। तो ये था कि जब हम स्कूल सुबह जाते थे तो स्कूल के बाद फिर डायरेक्ट अपने जमीन पे वहाँ अम्मी वाले काम कर रहे होते थे, वहाँ पे जाते थे, अम्मी खाना हमारा साथ में लेके जाती थी, वहाँ खाना खा के उनके साथ काम करने लग जाते थे। घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो मीडिया में देख रहे हैं और अखबारों में डेली उनकी बेटी की तस्वीरें छपी होती हैं और लोग सारे मतलब पूरी दुनिया उनकी मतलब बेटी की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उसको उनको ये नहीं पता कि वो सेनेटर बनी, ये है कि सेनेटर बनी है लेकिन सेनेटर क्या होती है ये नहीं पता।
ये थी कृष्णा कोहली। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया से।
तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल रात केंद्र की एनडीए सरकार से अलग होने का ऐलान किया। नागालैंड में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है और नए मुख्यमंत्री कोहिमा में शपथ लेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। लंदन में उनकी मुलाकात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से हुई, जहां टेरेसा ने यमन में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। अमरीका के एल्यूमिनियम और स्टील आयात पर टैरिफ लगाने को लेकर यूरोपीय संघ ने अमरीका की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ, फेसबुक प्रसारण में मदद की भूमिका राय ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।